तो ये हम लोग पढ़ेंगे 103 से 99 से और 102 ओके 99 ओके तो 102 का है तात्पर्य है 102 इकट्ठा पढ़ेंगे और बाकी मैं वो प्यार पढ़ूंगा और उसके बाद अर्थ अनुवाद आप लोग सुनिए। तो 99 इस तरह है अर्जुनेर रथे कृष्ण हाय रज्जुधार वसी आछे हाते तोत्र श्यामाल सुंदर। इसका अनुवाद है वह ब्राह्मण कहता गया वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूँ जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। फिर 100 नंबर यार अर्जुनेर कहिते छेन हित उपदेश तारे देखी हय मोर आनंद आवेश। अनुवाद जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के चित्र को देखता हूँ तो मैं भावमय आनंद से पूरित हो यावत पाड़ो तावत पाड़ तार दर्शन एही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूँ। इसी कारण से मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। 102 इकट्ठे पढ़ेंगे। प्रभु कहे गीता पाठे तो माराई अधिकार तुमी से जाना है ए गीता अर्थ सार। प्रभु कहे गीता पाठे तो माराई अधिकार तुमी से जाना ए गीता अर्थ सार। प्रभु कहे गीता पाठे तो माराई अधिकार तुमी से जाना ए गीता अर्थ सार। गुड। तो इस श्लोक का हम शब्दार्थ और अनुवाद करेंगे। शब्दार्थ है प्रभु कहे महाप्रभु ने उत्तर दिया गीता पाठे गीता पाठ में तुम्हारा ही अधिकार तुम उचित अधिकारी हो तुम्ही तुमसे अर्थसार सॉरी तुमी तुम से वह जाना जानते हो इस गीता भगवद गीता का अर्थ सार वास्तविक सार। अनुवाद है इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा निसंदेह भगवद गीता पढ़ने के तुम्ही अधिकारी हो तुम जो कुछ जानते हो वही भगवद गीता का वास्तविक तात्पर्य है। तात्पर्य शिलोपोपाद जी के द्वारा शिलोपोपाद की शास्त्रों के अनुसार भक्तया भागवतम ग्राहम न बुद्धया न चतीकया मनुष्य को शुद्ध भक्त से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत को सुने सुनकर उन्हें समझना चाहिए मात्र पांडित्य या कुशाग्र बुद्धि से इन्हें नहीं समझा जा सकता। यह भी कहा गया है गीता दीता च एनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवद्गीता पढ़ता है उसे वैदिक ज्ञान का सार प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 के अनुसार यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हयथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है उन्हीं को वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। सारा वैदिक साहित्य श्रद्धा तथा भक्ति से समझा जा सकता है, सांसारिक पांडित्य से नहीं। इसीलिए हमने भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत की है। ऐसे अनेक विद्वान तथा दार्शनिक हैं जो भगवद्गीता का पाठ पांडित्य पूर्ण ढंग से करते हैं। वे अपना समय तो नष्ट करते ही हैं, किंतु उनकी टीकाएं पढ़ने वाले भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षून्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप जानते हैं इस अध्याय का जो शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्राओं पे निकले हैं, तो तीर्थ यात्रा करते करते अब वो यहाँ पहुँचे हैं कावेरी के तट पर, जहाँ पर उनको एक ब्राह्मण मिलता है। वो ब्राह्मण जो है वो भगवद्गीता को पढ़ रहा है, देख रहा है और रो रहा है। वो बाकी के आसपास के जो लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो पता लगता है कि अनपढ़ है। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगता है कि अच्छा इसीलिए हंस रहे हैं कि अनपढ़ है, और इसीलिए वो रो रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन जब पूछताछ होती है तो वो कहते हैं कि मैं तो ये भाव विभोर हो रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि रोज़ भगवद्गीता पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और जो ये चित्र देखता हूँ मैं, उस चित्र को देख के ही मैं भाव विभोर होता हूँ कि कैसे जो है भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, कैसे उसको उपदेश दे रहे हैं। भगवान की जो भक्त वत्सलता है, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, इसी को देख देख के मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। ये है मेरे अश्रुओं का कारण। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं आज का श्लोक, वो यही कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, निस्संदेह भगवद्गीता पढ़ने के तुम ही अधिकारी हो, तुम जो कुछ जानते हो वही भगवद गीता का वास्तविक तात्पर्य है। तो रूपाजी तात्पर्य वो दक्षिणा से समझा रहे हैं कि भगवद गीता या सारे वैदिक ग्रंथ, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा सारा वैदिक साहित्य श्रद्धा तथा भक्ति से समझा जा सकता है, सांसारिक पांडित्य से नहीं। तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा। क्योंकि तो लोग सोचते हैं कि इसके लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धिमान लोग जो हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से भक्ति को समझ सकते हैं, पर यहाँ पे साफ कहा है कि सांसारिक पांडित्य से कुछ समझ नहीं आएगा। आप मान लो बहुत अच्छे संस्कृत के स्कॉलर हो, संस्कृत बहुत अच्छी आती है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैदिक साहित्य समझ आ जाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो जो मेडिकल की किताबें हैं, मेडिकल की किताबें जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश का टीचर है उससे जाके पढ़े मेडिकल की किताबें तो समझ आएंगी हमें। ये तरीका है, उसको इंग्लिश आती है वो समझा देगा हमें, नहीं है ना। ये अगर आप लोग मेडिकल की किताबें पढ़ने तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर वैदिक साहित्य को समझना है तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा, भक्तों के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये वाला श्लोक उद्धृत किया है श्वेता सूत्र उपनिषद से, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। मतलब जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है उन्हीं को वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकट हो जाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्वकर्म कृत है, सर्वकर्म कृत है, जिसको ये विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय है, सुदृढ़ विश्वास है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, गुरु की भक्ति करने से सारे कार्य हो जाएंगे, वो जो है वैदिक साहित्य को समझ सकता है। नहीं तो अगर आप संस्कृत जानते हो या आप संसार में बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप प्रधानमंत्री बन गए या आप राष्ट्र पिता बन गए, आप राष्ट्रपिता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवद गीता पे टीका लिख सकते हो क्योंकि मैं राष्ट्रपिता हूं, ये कोई क्वालिफिकेशन। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं सांसारिक पांडित्य से नहीं चलेगा। आप चाहे राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपिता हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं। यहां मैं तो IAS ऑफिसर हूं, कितने भी संसार में आप कितने भी बड़े हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। उससे वैदिक साहित्य जो है आप नहीं समझ सकते। वैदिक साहित्य को समझने के लिए आप में भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण में, गुरु में, साधु में, यही है। इसी से शुरुआत होती है भक्ति की, श्रद्धा जो है उससे शुरुआत होती है, है ना। श्रद्धा से सब चीजें स्टार्ट होती हैं। अगर हमारी संसार में श्रद्धा है तो संसार में बढ़ते चले जाएंगे आगे, और अगर भक्ति में श्रद्धा है, भक्तों में श्रद्धा है, तो उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अगर भक्तों में श्रद्धा है तो भक्तों का संग करेंगे हम, साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे। और अगर हमारी श्रद्धा को हम साधु संग से, उनके वचनों से बढ़ाएंगे, हम भजन क्रिया में लग जाएंगे, है ना, भजन क्रिया करेंगे, और नहीं तो हम असाधु संग करेंगे। अगर श्रद्धा संसार में है तो साधुओं का संग अच्छा नहीं लगेगा हमें, असाधुओं का संग बहुत अच्छा लगेगा, और फिर हमारी भोजन क्रिया शुरू कर देंगे। भोजन भजन नहीं, भोजन होगा, भोगों के प्रति हमारी क्रिया होगी, और भोगो और भोगो, लेटेस्ट स्मार्टफोन, लेटेस्ट ये सारी चीजें, भोजन क्रिया, भोजन मतलब भक्षण, मतलब भोगों, भोगों की क्रिया। असाधुओं का ये होगा, और जब साधुओं का संग करोगे, भजन क्रिया करोगे, तो अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ चले जाएंगे आपके अंदर, और उधर क्या है, अनर्थ वृद्धि होगी, अनर्थों की वृद्धि होगी, और आप समझोगे हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, आपका अहंकार बढ़ जाएगा, एटीट्यूड जिसे कहते हैं ना एटीट्यूड, अहंकार हो जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगी आपकी, गुस्सा बढ़ जाएगा, बहुत गुस्सा, छोटी सी बात में गुस्सा आ जाएगा, व्हाई डिड यू टच मी, डोंट नो हु एम आई, आप टच भी नहीं कर सकते उसको, टच करने में इतना बड़ा करंट लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि एंगर गुस्सा ये बढ़ गए उनके अंदर। ये है असाधु संग और भोजन क्रिया का रिजल्ट, और पूर्ण की पूर्ण निष्ठा आपकी हो जाएगी संसार में, पक्के संसारी व्यक्ति हो जाओगे, हिरण्यकशिपु की तरह या रावण की तरह, पक्के पक्के मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति, तोड़ नहीं सकता उनको कोई भी। जब पूर्ण रूप से आप अनर्थों की वृद्धि कर लोगे, अहंकार टॉप पे है आप में, ईर्ष्या लोभ ये टॉप पे है आपके ऊपर, मतलब लोभ का मतलब सुबह से शाम तक गधे की तरह काम कर रहे हो, आप गधे बन गए हो, लेकिन सोच रहे हो कि मैं तो सबसे स्मार्ट व्यक्ति हूं इस संसार का, जैसे हिरण्यकशिपु सोचता था, उन्हें बच्चे को तो कंट्रोल नहीं कर पाया, 5 साल का बच्चा है उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और सोचता था कि मैं तो, मेरा नाम जपो, मैं हूं भगवान, ऐसे हो जाता है, पागल ही हो जाता ना व्यक्ति, पागल ही होना है, समझ नहीं आता उसको अहंकार ये, तो ये श्रद्धा से शुरू होता है। तो इसीलिए हमें श्रद्धा जो है इधर बढ़ानी है, ताकि हमारी श्रद्धा निष्ठा में कन्वर्ट हो गए, रुचि आसक्ति और आगे बढ़ जाए, प्रेम प्रेम तक जाएं और भगवान से प्रेम हो जाए, और इस संसार का जो हमें सो कॉल्ड प्रेम है, इस संसार से सो कॉल्ड आसक्ति है, खत्म हो जाए। वो जो जो है, मतलब जो एक इल्यूजन है, एक धोखा है, माया है, अज्ञानता है, इस संसार में कोई आसक्ति वाली चीज है ही नहीं, तो फिर भी आसक्ति किए बैठे हैं, सबको पता है नहीं। युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया कि महाराज ये बताओ, यक्ष ने पूछा कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है संसार में, तो उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि रोज हम देख रहे हैं कि हमारे संगे साथी और रिश्तेदार वो जा रहे हैं संसार को छोड़ के, लेकिन हम सोचते हैं हमने कभी नहीं जाना, हम ऐसे प्लानिंग करके रखते हैं, नहीं 10 साल की इन्वेस्टमेंट, 20 साल की इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, 20 साल बाद इतना हो जाएगा, 20 साल दे दीजिए, तो जो वो है वो संसार के प्रति जो आसक्ति है ये अज्ञानता है, कुछ नहीं है इस संसार में, तो छोड़ना है इस संसार को, तो छोड़ना ही छोड़ना है, और छोड़ रहे हैं, है ना, इंद्रिया हमारा स्वाद छोड़ रही है, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं इंद्रियां थिथिल होती जाती हैं, जिससे हम संसार को भोग रहे हैं वो इंद्रियां में छोड़ रही हैं, अब देख रहे हैं ना हम, ऐसा थोड़ा है कि हमें मृत्यु के बाद ही सब कुछ समझ आएगा, अभी भी तो समझ आ रहा है, हमारी जो इंद्रियां जो भोगते हैं जिससे हम संसार को, वो इंद्रियां साथ छोड़ रही हैं, नहीं कान कमजोर हो गए, जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का 7 साल का, उसको दो टॉफी दो, कितना मजा आता है उसको खाने में, क्योंकि उसकी जो सेंसेस हैं, जो टंग है बहुत तेज है, बहुत शार्प है, उसको टेस्ट बहुत तेज परसीव होता है, अब किसी बड़े आदमी को दो या किसी बुढ़े को दो, उसको तो लगता है क्या है, नहीं वो सारी चिथिल हो चुकी होती है, या उसकी थोड़ी सी स्किन को ऐसे ऐसे करो, कितना अच्छा लगता है, तो चिथिल हो गई होती है, समझ रहे हो पॉइंट, पकड़ रहे हो नहीं, आंखें देखो, आंखों में कैटरेक्ट आ जाता है, आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता, बच्चे की आंखें देखो कितनी तेज होती है, अंधेरे में भी पड़ लेगा आपको, थोड़ी देर रोशनी में पड़ लेगा, सच कह रहा हूँ, धीरे 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 आंखें कान सब ये छोड़ रही है हमारा साथ, जिससे आप भोग भोगना चाहते, फिर क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, तो पागल बनी तो अज्ञानता ही तो, और क्या, तो हमारा जो होना चाहिए कि श्रद्धा इधर हमारी बढ़े, और श्रद्धा हमें आएगी जब हम भक्तिपूर्ण कार्य करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तभी हमारी श्रद्धा आएगी, उसके लिए जब भी हमें मौका मिले उसके लिए तैयार रहना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए, मौका बढ़ाना चाहिए, अगर हमने शुरुआत की कि हम जन्माष्टमी में आए बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरी जन्माष्टमी में आए अब ये नहीं कि जीवन भर जन्माष्टमी में ही आना है मंदिर, कई लोग ऐसा प्लान बनाते हैं हर जन्माष्टमी जाया करेंगे जी, कोई फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं, संसार के रह गए तो। अब बोलो जी रामनामी भी एक होती है, भगवान राम भी तो है, अब रामनामी पे भी जाया करेंगे, अगले साल से रामनामी पे भी जाया करेंगे, फिर अगले साल से सारे जो भगवान के जन्मदिन पे जाएंगे, नरसिंह चतुर्दशी पे भी जाएंगे, गौर पूर्णिमा पे भी जाएंगे, सब जाएंगे, तो फिर आपने आप ही देखना कितना आपको टेस्ट आएगा, धीरे 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 आपका ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए रोज आना चाहिए, रोज क्या फिर यही तो घर है, यही रहना है आप तो, जाना कहाँ है, असली घर तो पहुंच गया, ऐसा प्लान होना चाहिए एक दिन इसी घर आना है वापस, यही तो प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉडहेड, क्या ही बैक टू, यही तो है, यही तो है गॉड, और कहाँ जाना है, थोड़ा इंतजार करेंगे मृत्यु होगी तो भगवान के घर जाएंगे देखेंगे कैसा होता है, उसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा, जैसे कई लोग कहते हैं जी ओ किसने देखा जी मृत्यु के बाद कौन आता है वापस बताने के लिए कि ये स्वर्ग है ये नरक है, कौन आता है जी, सब बातें हैं जी, तो बताओ ना है देखो ये स्वर्ग में मैं आ गया हूं मैं, हरे कृष्णा स्वर्ग में हूं मैं, वैकुंठ में, स्वर्ग में नहीं वैकुंठ में हूं मैं, इसी जन्म में अनुभव करो ना वैकुंठ का, नहीं है ना, तो इसी जन्म में हमें आगे बढ़ना है, इसी जन्म में श्रद्धा से साधु सांग ये करते करते इसी जन्म में प्रेम को प्राप्त करना है, इसी शरीर में नहीं, इंतजार करना है कि ये शरीर खत्म होगा तो फिर हमें प्रेम मिलेगा, नहीं, रोबा जी कह रहे हैं यही बात बता रहे हैं, उसका उसके लिए क्या जरूरी है, यही यस्य देवा पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य अते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, है ना, प्रभुपाद जी देखो प्रभुपाद जी कितना विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर, 70 साल तक उनको कोई सफलता नहीं मिली, अब सोचो हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सफलता नहीं मिले तो हम छोड़ते हैं प्रोसेस बेकार, कुछ हो ही नहीं रहा, प्रभुपाद जी 70 साल और प्रभुपाद जी और हमारे में कितना अंतर आप जानते हो, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे याद नहीं है मैंने जीवन में कभी कोई पाप किया हो, ऐसे हैं प्रभुपाद जी, ऐसे शुद्ध हैं वो, आप कह सकते हो ये, कोई कह सकता है कि जीवन में मैंने पाप नहीं किया है, किसी की ताकत, प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी जब 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने उनको राधा गोविंद दिए, ऐसा जो भक्त है इतना भगवान का अटूट भक्त है उसको कोई सफलता ही नहीं मिल रही, तो वो सोचेगा नहीं क्या भगवान क्या है, भगवान क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात, क्या कारण है, 70 साल तक भटक रहे हैं यहां से वहां, भिखारियों की तरह इस दिल्ली जैसे शहर में भिक्षुक की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई सफलता नहीं, तो क्या उनके कोई निष्ठा में उनकी श्रद्धा में कोई कमी आई क्या, क्योंकि भगवान उनको ऐसी सफलता देना चाहते थे ना भूतों ना भविष्य थी, ऐसी किसी आचार्य को तो सफलता आजकल आज तक इतिहास में मिली नहीं जितनी प्रभुपाद जी को सफलता मिली, क्यों, क्योंकि उनका अपने गुरु में अटूट विश्वास था, गुरु के शब्दों में उनके गुरु ने कहा था आप पाश्चात्य देशों में जाके सनातन धर्म का प्रचार करो, गुरु मुख पद्म वाके चीते ते करिए आए, क्या गुरु के मुख से जो वाक्य निकल गया, गुरु के कमल मुख कमल से जो वाक्य निकल गया वही आपका लाइफ एंड सोल, उसके ऊपर जीवन कर दो, ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर हम गुरु की वो बातें तो मानते हैं जो हमें समझ में आती हैं, जो बातें समझ में नहीं आती वो हम छोड़ देते हैं और वहीं आपको भगवान मिलने वाले होते हैं, वहीं पे आप छोड़ देते हैं, जैसे एक शिष्य था वो भगवान की सेवा में और गुरु की सेवा में लगा हुआ था, तो गुरु जी को कहता था गुरु जी इतने महीने हो गए आपने तो भगवान के दर्शन ही नहीं कराया, फिर कहा उसने गुरु जी देखो इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं भगवान के दर्शन ही नहीं कराया आपने, एक दिन गुरु जी को बड़ा ना वो आया परेशान हो गए, कहते अच्छा आप तुझे दर्शन कराता हूं चल मेरे साथ चल दर्शन कराता हूं, आ खींच के ले गए, कहते इस कुएं में छलांग लगा चल अभी दर्शन हो गए तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तो घबरा गए कहते तो गुरु जी गुस्से में आ गए ऐसे मानना चाहते हैं मुझे, और उनके साथ जो दोस्त था ना उसका वो कूद गया नीचे, गुरु ने कहा कूद गया वो तो गुरु की आज्ञा कूद गया अंदर तो भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया, नहीं समझ आई बात मतलब जब गुरु ऐसी बात कहते हैं कि जो हमारी समझ के बाहर है, हम सोचते हैं गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में कह दिया एक गुरु जी ने, गुस्से में कह दिया, उसने शिकायत लगाई होगी इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता, गुरु इन चीजों से ऊपर है, नहीं तो फिर गुरु क्या है, गुरु इन चीजों से ऊपर है। इसीलिए कहा गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कर आए, क्या गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है आपके लिए वो चित्त पे, वो अपनी चेतना में ले आओ, वो आपके लिए है, वो आशीर्वाद है, वो गुरु का आशीर्वाद है। गुरु जी आशीर्वाद, तो आशीर्वाद यही आशीर्वाद है। जब गुरु जी कुछ बोल रहे हैं आपको, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आशीर्वाद है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने आशीर्वाद दिया ना श्रील प्रभुपाद जी को, आशीर्वाद था ये, तभी तो प्रभुपाद जी कर पाए। प्रभुपाद जी ने थोड़ा कहा कि मैंने किया है, प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरु की आशीर्वाद है इसलिए मैंने ये कार्य किया। और हमारे गुरु महाराज को देखिए, ज्वलनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखो, कभी वो ये थोड़ा कहते हैं कि मैंने किया है ये कार्य, मैंने प्रभुपाद जी की कृपा है। तो कभी उनसे पूछ के देखो, गुरु महाराज इतने मंदिर बनाए आपने, दिल्ली में इतना प्रचार किया आपने, कितने मंदिर खोल दिए, अब आप बात करके देखो, पूछ के देखो, कभी वो कहें कि हाँ मेरे कारण हुआ। क्योंकि यही भक्ति है, यही यही तरीका है, यही भगवान की ये योग माया है, ये भगवान की योग माया है। भगवान ने भक्ति को ये रखा हुआ है इस बॉक्स में छुपा के, ये जब तक आपकी श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी गुरु गुरु परंपरा में भगवान में, तो समझ नहीं आएगा, पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है कि मेडिकल की किताबें आप इंग्लिश पढ़ने से, इंग्लिश में लिखी हुई हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ने से नहीं जान सकते, वो टेक्निकल हैं, वो जो व्यक्ति जानता है वही आपको समझाएगा इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल है ये। और भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, हमने पढ़ा हुआ है 9वें अध्याय का, परम गुहे ज्ञान में शुरू शुरू में क्या कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परम तपः अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। तो अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा संसार में उत्पन्न हो जाएगी। बहुत 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 महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करना। और भक्तों का संग करने के लिए कुछ भी करना पड़े करो, दूर जाना पड़े, कष्ट सहना पड़े, गर्मी में रहना पड़े, कुछ भी रहना पड़े, भक्तों का संग करो। क्योंकि वही श्रद्धा को बढ़ाएंगे, साधु संग भजन क्रिया ये सारी चीजें होंगी और श्रद्धा बढ़ेगी आपकी। इसीलिए प्रभुपाद जी साहब लिख रहे हैं, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है, श्रद्धा मुख्य है। और श्रद्धा आएगी हमारे श्रद्धालुओं के संग में रहने से, श्रद्धालुओं के संग में रहेंगे, उन भक्तों के संग में रहेंगे जिनमें बहुत ज्यादा निष्ठा है, श्रद्धा भी आगे निष्ठा है, निष्ठा रुचि है जिनमें। रुचि का क्या मतलब, ये सारी श्रद्धा की स्टेजेस हैं। श्रद्धा ही निष्ठा में बदलती है, निष्ठा ही रुचि, रुचि आसक्ति प्रेम, प्रेम क्या है, श्रद्धा ही तो है। सारी श्रद्धा की स्टेजेस हैं। जैसे जैसे पानी है, पानी पानी बर्फ बन जाता है, पानी तो है बर्फ बन जाता है वो, है ना। लेकिन पानी जैसे पानी है, चीज वही है, अंतर कितना आ गया। तो ये है श्रद्धा, तो श्रद्धा आम व्यक्ति में श्रद्धालु आते हैं तो कोमल है, कोई भी तोड़ सकता है। तो इसीलिए जो कोमल श्रद्धा है जब हमारी, तो उसको बहुत बचा कर रखना है हमें, बहुत बचा कर। कोई भी नष्ट कर सकता है अभी श्रद्धा को, कोई भी। जैसे एक कपोल होती है, कपोल समझते हो, सीडलिंग, सीड होता है सीड, उसमें से वो निकलती है, उसको इंग्लिश में सीडलिंग कहते हैं, हिंदी में कपोल कहते हैं। इतना सा पौधा निकलता है, छोटा सा, उसको कोई भी चिड़िया खा जाएगी, खत्म, पौधा खत्म, लाइफ खत्म उसकी। कोई भी कीड़ा, बड़ा सा कीड़ा आ गया, उसको खा के खत्म कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि उनको हम फेंसिंग करते हैं, उसको फेंसिंग करते हैं, कोई पक्षी ना आए, कोई कीड़ा ना आए, उसको बचाते हैं झाड़ से या ईंटों से, देखा है ना आपने, उसको बचाते हैं। छोटा पेड़ होता है, जब बहुत बड़ा बनना होता है, और वही चिड़िया, वही जो कीड़े मकोड़े, वही जो छोटे पक्षी जो हैं, जो उसको नष्ट कर सकते थे, वही जब ये पेड़ कितना खड़ा हो जाता है वही, तो उसमें आश्रय लेते हैं, वहां पे घोंसला बनाते हैं, आश्रय लेते हैं। इसी तरह से आज जो आपकी कोमल श्रद्धा को तोड़ सकते हैं, है, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, है ना, हिरण्यकशिपु की तरह माता पिता भी हो सकते हैं, आपके उल्टा भी हो सकता है, माता पिता भागते हैं, बच्चे भी हिरण्यकशिपु उल्टा, बच्चे कह रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक तीन चक्रों में पड़ गए हो आप, है, आपको दुकान पे ध्यान ही नहीं देते आप, देखो जब देखो वहां पहुंचे होते हो आप, हमारा क्या होगा, आप संन्यास ले लोगे, हमारा क्या होगा। बच्चे ऐसे भी हैं, उल्टा भी है, ये नहीं है कि बच्चे ही प्रहलाद है, आजकल माँ बाप भी है, बच्चे हिरण्यकशिपु बने हुए, ऐसा भी है। तो उनसे हमें, अश्रद्धालु लोगों से हमें फेंसिंग करके रखनी है, वो कोई भी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई है, उनसे हमें बचना है, बचना है, उनसे मेलजोल खत्म कर देना है थोड़े दिनों के लिए। और जब आपकी भक्ति बढ़ते 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 बढ़ते, भक्ति का जो पौधा है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एक बनियन पेड़ की तरह खड़ा हो जाएगा, बरगद के पेड़ की तरह, तो सारे के सारे वो लोग आके आपका आश्रय लेंगे, महाराज हमारे घर भी आओ, हमारे घर आओ, चरण डालो हमारे घर आके आओ। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, है ना। तो इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोमल श्रद्धा को बचा के रखो, ये अभी के लिए है, हमेशा नहीं है। फेंसिंग वो तो तोड़ के चला जाता है पेड़, उसको फेंसिंग जो होती है, देखे ना कई लोग, कई लोहे की फेंसिंग होती है, वो बड़ा हो जाता है तोड़ देता है उसकी फेंसिंग को। तो जब संन्यास ले लोगे आप सब लोग, तो फिर थोड़ा फेंसिंग में रहोगे आप, तो घूमोगे सारे फेंसिंग तोड़ के, सारे संसार में घूम के प्रचार करोगे, आश्रय दोगे, यस। तो पेड़ पेड़ की तरह हमें सारे फिर इन लोगों को, श्रद्धालुओं को फिर आश्रय दे सकते हो आप। लेकिन अभी शुरुआत में हमें फेंसिंग करके रखनी है, क्योंकि हमारी श्रद्धा कोमल है, और भक्तों का संग करना है हमें, ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े। है भक्ति शास्त्रों को पढ़ना है, भक्ति में श्रद्धा हमें, भक्तों का संग, और ये जो है ना, ये भी भक्त हैं, है, बुक भागवत, ये भी भक्त हैं, इनको जो हम पढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। ये जो भक्ति के शास्त्र हैं, उनको पढ़ने से हमारी, उनको जरूर पढ़ना है हमें, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में जानना है हमें। वो दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो भक्ति से पूर्ण नहीं है, जो फिलॉसफी है, जस्ट फिलॉसफी है, अपना मतलब कोई पॉइंट लेके और अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करके किताबें लिखी हुई हैं तरह तरह की, जो पांडित्यपूर्ण, उससे नहीं इंप्रेस होना, पांडित्यपूर्ण, है ना। मायावादी भाषा सुनिया हले सर्वनाश, वो भाषा नहीं सुनना जो आपके टेलीविजन के चैनल में आते हैं, कितने हैं, है ना। ये लोग कहते हैं जी हम तो भक्ति के चैनल देखते हैं, प्रभु जी टेलीविजन घर रखा हुआ है, लेकिन सारे जो भक्ति वाले चैनल आते हैं ना, वही देखते हैं हम। वो आपको भक्त बनाने के लिए थोड़ा उन्होंने चैनल खोले हैं उनका, तो बिजनेस बंद हो जाएगा उनका, भक्त बन जाएंगे सारे, तो इसलिए थोड़ा उन्होंने चैनल खोले हैं कि सब 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 भगवे कपड़े डाल के घर बार छोड़ के मंदिर आ जाओ। उनका ये तात्पर्य नहीं है तो आपको असर कैसे होगा। वो तो चाहते हैं संसार में लिप्त रहो, धंधा करो और ये मनोरंजन करना है तो हमें मनोरंजन इस तरह से भी कर देते हैं आपका। हमें भी मनोरंजन करना आता है, देखो भागवतम पढ़ेंगे आपका मनोरंजन होगा, देखो क्या आनंद आएगा, भागवतम से आनंद देंगे हम आपको। लो आपको फिल्मों वाला आनंद नहीं चाहिए, हम भागवतम से आपको आनंद देते हैं, वही आनंद आएगा। लो ना, ये आशय उनका, ये पर्पज है। तो कहां से भक्त बन जाओगे आप? तो वो नहीं सुनना, वो नहीं सुनना। आपको शिल्पोपाजी की किताबों को पढ़ना है बहुत ध्यान से, और इनको नमन करना है, इनको माथे पे लगाना है, इनको प्रार्थना करनी है कि आप प्रकट हो जाओ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तभी आएगा ये, तभी आएगा प्रभु जी। स्मार्टफोन में सारी किताबें डाउनलोड करने से नहीं आएगा। स्मार्टफोन में सारी किताबें हैं, सारी पिक्चरें हैं, राधिका राधिका रमन सब देखो प्रभु जी, देखो स्मार्टफोन का फायदा देखो। आप क्या सोचते हो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज कर रहा हूं? तो फिर किताबें बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बंद कर देना चाहिए, स्मार्टफोन कितने लोग खुश हो जाएंगे। नहीं, स्मार्टफोन की पूजा नहीं कर सकते आप, और जब तक पूजा नहीं करोगे, जब तक इनकी भक्ति नहीं करोगे, ये आपके हृदय में प्रकाशित नहीं होएंगी। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो अपने आप उनमें, जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है उन्हीं को वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः ही प्रकट हो जाता है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमारे शिल्पोपा जी के परम गुरु हैं, उनके गुरु के गुरु हैं, और उनके जो शिष्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो प्रकांड पंडित हैं, पंडित थे वो, ज्योतिष आचार्य बहुत बहुत पंडित थे वो, और गौर किशोर दास बाबा जी खुद जो उनके गुरु हैं अनपढ़, पता है आपको, तो कहते हैं पांडित्य पूर्ण, उससे थोड़ा आपको उनके हृदय में स्वतः ज्ञान प्रकट हो गया, इतना भगवान के नामों का जप करते 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 उनके हृदय में खुद ही सारा ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये चीजें दूर से ऐसे लगती हैं, मिस्टिकल लगती हैं जी, खुद ही कैसे प्रकट हो जाएगा जी, कैसे हो जाएगा, लेकिन जब आप इसमें आओगे तो ये सब मिस्ट्री खत्म हो जाती है, कुछ मिस्ट्री नहीं है, और रोज ही आपके साथ फिर मिराकल्स घटना होंगी, रोज ही चमत्कार होंगे, रोज लोगों को लगे, आपको तो कोई चमत्कार है, आपको तो लगेगा भगवान का हाथ है इसमें, आपको तो हर चीज में भगवान का हाथ नजर आएगा, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वज्ञ है, सब जगह विराजमान है, आपको तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, तो लोगों को लगेगा कैसे हो रहा है। जैसे जब मैं ज्वाइन किया मैंने ये इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश, तो वो पहाड़ था, सिर्फ एक पहाड़ था, उसमें हमने मंदिर खड़ा करना था, और थोड़े से भक्त थे, ऐसे थोड़ा नहीं थे, ऐसे थोड़ा भक्त नहीं आते थे, ऐसे तो जब हमारी जन्माष्टमी होती थी तो भक्त आते थे, सच्ची बात बता रहा हूँ, दो चार भक्त थे, दो चार भक्तों को लेके गुरु महाराज ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, फिर हिंदुजाज जो हैं वो भी आ गए, हिंदुजाज इतने अमीर लोग हैं, तो उनसे पूछा गया कि कितना आपका बजट कितना है, तो गुरु महाराज ने कहा यही होगा कोई 3-4 करोड़ ऐसे होगा, ठीक है हम स्पॉन्सर करेंगे, उन्होंने कहा जी हम 3 करोड़ देंगे, नहीं शायद उन्होंने कहा 50% देंगे, इतना कुछ कहा 50% हम देंगे, सारे आपका बजट 3 करोड़ है, 50% हमारे से, 3 करोड़ तो कब खत्म हो गया पता ही नहीं है कि नहीं, थोड़े से भागते और गुरु महाराज को लग रहा था कैसे प्रोजेक्ट खत्म होगा ये, खैर भगवान की कृपा से और लोग हमारे ये वेद व्यास प्रभु जी आ गए, तो पीछे आपके रहते हैं पता है, ये आ गए और मतलब ये तो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, वो इसके कारण सारे इनके जो दोस्त जो बड़े बड़े लोग थे सबको इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, तो ये बहुत बड़ा, तो उस वक्त तो नहीं थे जब हिंदुजा से मिले थे और जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस वक्त तो नहीं थे, भगवान ने भेज दिया, तो खैर करते करते प्रोजेक्ट चल रहा था, तो गुरु महाराज की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, उन्होंने मुझे किसी ज्योतिषी के पास भेजा, वहीं भोगल में एक ज्योतिषी है उनके पास भेजा। बहुत बुजुर्ग थे वो प्रोपा जी से भी मिले हुए थे, प्रोपा जी अच्छी तरह जानते थे। तो इनकी जब उन्होंने देखी ना पत्री, तो कहते हैं इनके गुरु ने 108 मंदिरों की स्थापना की थी, ये व्यक्ति जो है 1008 मंदिर बनाएगा। मैं तो ये बंदा महाराज कह रहे थे तो बड़ा इसकी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो ये ठीक बंदा नहीं लग रहा। कोई एक मंदिर बनाने में हमारी जान निकल गई है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, वो 1008 मंदिर कह रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सच कह रहा था। हम तो सोच रहे थे कि मंदिर बने बनाए मिल रहे हैं आप तो, और मैं तो यही सोच रहा था ना कि मंदिर जो है बनाने पड़ेंगे, वो बने बनाए मंदिर बन रहे हैं, मिल जाएंगे तो 1008 मंदिर देर लगती है, बनाने में देर लगती है ना। तो ये भगवान क्या करें, अब हम सोच नहीं पाते ना वहां तक कैसे होएगा। ऐसी उन्होंने सोचा कि कैसे होगा कि बाहर के देश, यहां तो कुछ हो नहीं रहा इंडिया में, बाहर के देशों में प्रचार होगा, है पृथ्वी से जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो ही मोरो नाम। तो लोगों ने सोचा पृथ्वी का मतलब है ये इंडिया, उन्होंने ये इसका मीनिंग लिखा पृथ्वी इंडिया। प्रभुपा जी ने ये मतलब नहीं निकाला, एज इट इज, और कर दिया उन्होंने प्रचार, हो गया। मुश्किल था लेकिन भगवान भगवान के लिए क्या मुश्किल है। तो इसी तरह से जब हमारा गुरु में साधु में शास्त्रों में विश्वास है तो कोई कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये रियलिटी है। ये तो कलयुग का वातावरण है, इसका प्रचार नहीं हो रहा, बेकार की चीज़ों का प्रचार हो रहा है, और बेचारे अध्याय करो आपके ऊपर है, आपके कंधों में अध्याय करो लोगों पर प्लीज़। वो तो जा रहे हैं नरक में, भागे जा रहे हैं नरक के रास्ते में, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, और सोच रहे हैं हाँ हाँ कितना खुश है, कितना मन प्रसन्न है, जा रहे हैं नरक की तरफ पशु की तरह। जैसे पशु यहाँ जाके चारा खा रहा होता है और उसके साथ वाले का गला कट रहा है, समझ मेरा नंबर अगला, उसको नहीं समझ पशु, ठीक है। जब कसाई का घर में खड़े होते हैं तो वो पशु का गला कट रहा है, साथ वाला मजे से घास खा रहा होता है, उनको कोई चिंता ही नहीं है मेरा क्या कितना। तो इस तरह से हम पशु नहीं हुए, हमें भगवान ने बुद्धि दी है और हम समझें और लोगों को बताएं, और आप प्रचार करोगे चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है ये सफल होगी। पृथ्वी से जदो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मरो नाम, तभी तो इतने सारे भक्त आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त आ रहे हैं, इतने सारे भक्त नहीं आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे भक्त आ रहे हैं, है ना। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुना आपने। आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी हानि होगी इनकी इनकी आपका इनका पहले इनका लो यंग फर्स्ट पहले है ना सच है ना। थैंक यू
प्रभु जी। श्रद्धा मैच्योर स्टेट में भी फिर दोबारा से मेल्ट हो सकती है क्या?
नहीं, जब आप प्रेम की तरफ पहुंच जाओगे फिर नहीं, नीचे नहीं आते। श्रद्धा जब आप रुचि ये आगे की स्टेजेस हैं तो नीचे नहीं आते फिर आप, लेकिन ये है वहां पर रह सकते हो आप, आगे बढ़ने से रुक सकते हो। मतलब ये जो चेंज है ये कॉन्शियसनेस का चेंज है ना, ये शरीर का चेंज नहीं है। शरीर के चेंजेस जो हैं वो तो जैसे अगर हम मान लो इसमें हम डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए और अगला जन्म में हम थोड़ा वो डॉक्टर इंजीनियर फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये तो कॉन्शियसनेस का चेंज है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस उन्नत हो गई है तो नीचे कैसे आएगी, ऊपरी तो ऊपर जाओगे फिर भगवान के धाम जाओगे। इस जन्म में जितना आपने प्रगति कर ली है ना, नेहा विक्रम नाशो अस्ते प्रत्यवायो न विद्यते सुलभम से धर्म से प्रायते महत्व, थोड़ी सी भी आपने प्रगति कर ली हो तो स्टेज रहेगी वहीं पर, अगले जन्म फिर वो आगे से शुरू करोगे, उससे अगला जन्म फिर आगे फिर आगे फिर आगे, है ना। इसीलिए तो जो कई लोग देखो जैसे यंग एज में ही हमारे वो देखो छोटी सी उम्र में सन्यासी बन के बैठे हुए कैसे, और पिछले जन्म में बहुत तपस्या बहुत भक्ति कर चुका है, ये छोटा नहीं है, ये उम्र में छोटा लग रहा है ना। कोई भी आप सब जो लोग हो इतनी यंग उम्र में आप सारे प्रलोभन छोड़ के बैठे हो कैसे, पिछले जन्म में अच्छी तरह से इस चीज को समझ चुके हो ना, तो आगे कॉन्शियसनेस जब पैदा ही हुए, कॉन्शियसनेस अच्छी कॉन्शियसनेस लेके पैदा हुए ना, तभी तो जल्दी समझ आ गया। कितने बूढ़े बूढ़े लोगों को नहीं समझ आता, इतनी दुलत्तियां खा चुके हैं हम आए की पूछो मत, नहीं खाई फिर भी वहीं के वहीं जाएंगे, क्या कारण है? चेतना दो है, तो इसलिए हम उनकी चेतना 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 का क्वेश्चन है ना यहाँ। तो ये जो सारी चर्चा हो रही है उनकी चेतना का विकास करने की हो रही है, ये उन्नति है। चेतना का विकास करना उन्नति है, ये उन्नति नहीं है कि आपने सुविधाएं कर ली ये कर ली, ये क्या उन्नति है? आपके पास पहले छोटा फोन था, अब स्मार्टफोन हो गया, उन्नति हो गई, ये क्या उन्नति है? छोटी गाड़ी जब बड़ी गाड़ी ले ली, ये उन्नति क्या? उन्नति है ये? कोई उन्नति नहीं है। आपकी चेतना का विकास हो, ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है क्योंकि पशुओं का जो चेतना का विकास होता है अपने आप होता है, वो नेचुरल है। इस चेतना से आगे चेतना में जाओगे, फिर जैसे ऐसा बताया गाय का, शेर का, ये बंदर का, इनका ये विकसित चेतना वाले पशु हैं। इससे नीचे जो है नीचे की चेतना वाले होते हैं, और उससे भी नीचे होते हैं कीड़े मकोड़े और जो रेंगने वाले जानवर या ये मछलियाँ होते हैं, वो लो चेतना में होते हैं, तो अपने आप रेगुलर होते हैं। लेकिन मनुष्य चेतना में अगर आप चाहो तो पूरी चेतना को विकसित करके आप भगवान के धाम जा सकते, ठीक है? इनके पूछे ये भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलो
कृष्ण जी। प्रभु जी आज का श्लोक गुरु पे श्रद्धा का था, और आपका इस पर लेक्चर देना बहुत उचित था क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं आप कैसे गुरु की सेवा में लगे हुए हैं डीप रूप से। मैं आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जिनको करने से व्यक्ति की गुरु में श्रद्धा बढ़ सकती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो श्रद्धा वीक हो सकती है, उनसे हम कैसे बचें?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के प्रति बहुत श्रद्धावान है। आपको ऐसा लग रहा है, आपका धन्यवाद। मैं तो इतना श्रद्धावान हूँ कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु की, क्योंकि गुरु की श्रद्धा का मतलब है जो गुरु चाहते हैं वो करना। कितने लोग हैं जो गुरु महाराज जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, है ना? गुरु महाराज चाहते हैं कि जैसे अगर मंदिर बने तो मंदिर बना रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं मंदिर की सेवा में, या जो भी कार्य गुरु महाराज चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट हो मेरे, मैं नहीं हूँ तो मंदिर बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो, वो मैनेज कर रहे हैं मंदिर को। गुरु की सेवा है, गुरु की, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो गुरु में हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ती है जब हम उनके जो उपदेश हैं उनका एज इट इज़ पालन करते हैं, क्योंकि तब हमें पता लगता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। एज इट इज़ जब हम उनके उपदेश का पालन करते हैं तभी, क्योंकि उनके उपदेश में जैसे मैंने बोला आशीर्वाद है, तब हमें आशीर्वाद मिलता है। वो उसी के उसी से तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी जब आशीर्वाद मिलेगा, जब हमें वो वर मिलेगा, वर बूंद मिलेगा, बूंद वो मिलेगा जब हम उनकी एज इट इज़ सेवा करें जो जैसे वो कह रहे हैं। अपना दिमाग अपना ये नहीं लगाएं, हम अपना दिमाग लगाते हैं ना। जैसे एक शिष्य था, उनके गुरु जी ने कहा बेटा लाइट बंद कर दे, नींद आ रही है तेरी लाइट के कारण, वो पढ़ रहा था, तेरी लाइट के कारण जो है नींद नहीं आ रही। बुजुर्ग थे गुरु, बुजुर्ग हैं वो जवान है। कहता है गुरु जी कंबल ले लो ना, ऊपर कंबल ले लो, लाइट नहीं बंद की उसने, सोल्यूशन ले लिया सोल्यूशन, गुरु जी कंबल ऊपर ले लो ना अंधेरा हो जाएगा। पर जाए गुरु हम्बल है क्या करें, उन्होंने कंबल ले लिया, चलो ठीक है। फिर गुरु जी कहते हैं ऐसा है कि वो जो खिड़की है सामने उसको बंद कर दे, हवा आ रही है, हवा अच्छी नहीं लग रही। गुरु जी एक कंबल और ले लो ऊपर, ठंड भी नहीं लगेगी और अंधेरा भी अच्छा हो जाएगा। कहते हैं फिर बाद में कहते हैं ऐसा है बेटे नींद नहीं आ रही है, गिलास पानी तो पिला दे। अब दो काम तो कर चुका हूं, तीसरा अपने आप कर लो। ऐसा शिष्य नहीं बनता, दिमाग लगा के और गुरु को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप, सोच रहे हो कि दो काम कर दिए, वो कुछ नहीं किया तुमने, ऐसे थोड़ा काम होते हैं गुरु के, ऐसे कई लोग करते हैं अपना दिमाग लगा के, महाराज ये सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ये कर दिया मैंने। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो बड़ी बार ऐसे होता है, मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं आप हंस रहे लेकिन मैं ही हूँ वो शिष्य, मैं ही ऐसे करता हूँ, दूसरे को नहीं, मैं उदाहरण अपना उदाहरण अपनी बीती बता रहा हूँ। ये सेवा नहीं होती, सेवा है एज इट इज, जो गुरु कह रहे हैं एज इट इज करना है, एज इट इज, उसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारा दिमाग क्या करे, और यही तो समर्पण है। समर्पण क्या है कि आपको सब कुछ समर्पण करना है, इंटेलिजेंस भी अपनी समर्पण करनी है, ये इंटेलिजेंस समर्पण करना सबसे मुश्किल होता है। वो जो मैंने उदाहरण दिया कि कुएं में गिरो, तो उसकी इंटेलिजेंस कह रही है भैया मर जाएगा, क्या कर रहा है वो, मर जाएगा कुएं में कूदना, कोई मरना है क्या, सुसाइड करनी है, आत्महत्या करनी है क्या, उसकी इंटेलिजेंस बोल रही है, समर्पण कर देनी है गुरु, फिर देखो फिर बून मिलेगा आपको, फिर बर मिलेगा, श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ओके आपको है, ओके ले सकते हैं प्रभु जी, प्रश्न क्या सीन है वाइस प्रेसिडेंट जी, थैंक यू।
हरे कृष्ण जी, आपने अपने लेक्चर में बताया कि जैसे कर्मी लोग होते हैं उनमें बहुत अहंकार बढ़ जाता है, तो मतलब मैं अपने एग्जांपल में देखता हूँ कि भक्ति कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी अहंकार अभी कम नहीं हो रहा, वो निकल आता बीच बीच में, तो उसको कैसे।
एक तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि पुराना जो हमारे अहंकार है वो है अभी, अहंकार तो है ना हमारे में, तो वो जाएगा, भक्ति से जाएगा, जरूर जाएगा। और तो दूसरा, हम इसको इंटेंस करें, भक्ति को इंटेंस करें, जप को इंटेंस करें, सारी चीज़ों को इंटेंस करें तो जल्दी जाएंगे। और ये फिलोसफिकली हम समझें कि जो हमें भक्ति मिली है ये हमारा ये योग्यता नहीं है, ये भक्तों की कृपा है। हमेशा ये याद रखें कि हमें जो भक्ति मिली है ये भक्तों की कृपा से मिली है। हमें अहंकार तभी आता है ना जब हम सोचते हैं मैं करने करता है, हम इतनी मान्यते मैं सोचता हूँ कि मैं करने वाला हूँ। तो भक्ति के जो कार्य कर रहे हैं, भक्ति में जो लगे हुए हैं, ये कृपा है, गुरु की, भगवान की कृपा है। इस भावना से जब हम बार 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 अपने को पकड़ेंगे तो फिर अहंकार नहीं आएगा। हम ये अहंकार इसीलिए आते हैं क्योंकि सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ। यदि ने किसी को अहंकार इसीलिए था ना कि मैंने इतनी तपस्या की, जंगल में गया, इतनी तपस्या की, कोई कर सकता है तपस्या, दीमक भी लग गए थे, इतना दीमक का पहाड़ खड़ा हो गया था, तो ब्रह्मा जी को वर देने ही पड़े। ऐसे हम सोचते हैं कि इतनी भक्ति करेंगे कि भगवान को अपने धाम में लेना ही पड़ेगा हमें। ऐसे थोड़ा है भगवान, ऐसे थोड़ा भक्ति मिल जाती है आपको। भगवान चाहेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, चाहे उल्टे लटक जाओ आप, वीटो बावल उनके हाथ में है, वो किसी को भी दे सकते हैं, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूतना को मां का दर्जा दे दिया, कोई बात नहीं है, पूछो जाके क्यों दे दिया, अभी पूछ सकते हैं उनसे, कोई वो सम्राट है, वो किसी को कुछ भी कभी भी दे सकते हैं, और किसी को कुछ ना दे तो लटका रहे सारी उम्र, वो भी एक पर्सन है, पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन हाँ उनकी पर्सनैलिटी है, उनके ये गुण है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, करुणा के सिंधु हैं, तो ऐसा नहीं करते वो कि पूतना को दे देंगे और आपको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे। लेकिन हम अधिकार नहीं है हमारा, हमारा अधिकार क्या है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान वाक कतम विपाकम हृदय वाग वपुर भी विद्धा नमस्ते है? जीवे जो मुक्ति पदे सदाय भाग, दाय भागी, तब हमारा दाय भाग बनेगा अगर इस तरह से हम जीवन गुजारते हैं कि जैसी भी स्थिति हो, जैसे भी भगवान रखें, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, भगवान को हम नमस्ते करते रहें, हृदय वाग वपुर भी, अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से सेवा करते, कैसे भी रखें। आपके सामने उदाहरण है, हमारे आचार्य उदाहरण है, जयपदा का स्वामी महाराज को देखो कैसा उनका शरीर भगवान ने कैसे स्थिति में रखा हुआ है, तो कोई छोड़ने आएगा, सारी दुनिया में भ्रमण करना, अभी भी शिष्य बना रहे हैं, सारे गुरु महाराज को देखो, ईजोल गोपाल कृष्ण महाराज, ठीक है। तो हमारे फिर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है, भगवान की कृपा है। भगवान चाहेंगे तो हमें देंगे प्रेम, चाहेंगे, लेकिन हम उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते। ये भाव रहेगा तो हम फिर दैन्य भाव रहेगा, क्योंकि हम सर्वेंट हैं, सर्वेंट डिमांड नहीं कर सकता। जो स्वामी दे देगा वो, जैसे पशु होता है, कुत्ता होता है, बाहर बंदा होता है ना, वो डिमांड नहीं कर सकता। जब उसकी इच्छा होगी स्वामी की, दे देगा उसको खाने के लिए, नहीं देगा नहीं देगा। इसी तरह से हमें भी ये भाव रखना है, ये भाव से हम आगे बढ़ेंगे। ये भाव हमारे आचार्य बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं, हम ही तो कुकर, मैं तो कुत्ता हूँ आपका। अपने गुरु को कह रहे हैं, मैं गुरु जी आपका कुत्ता हूँ, आपकी इच्छा हो तो कुछ डाल देना, तो मुझे रख के रखना जरूर अपने घर में। ये आचार्य भाव दे रहे हैं हमें, ये आचार्य, जब हम भाव आएगा तो फिर अहंकार जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी प्रभु जी,
प्रभाव रहता है तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया गुरु का और शिष्य का, तो बाहर हमसे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम कुछ समय तक तो अपना क्रोध या ऐसा दबा करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो प्रभाव समाप्त हो जाता है तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, क्रोध आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बाद में फिर पछतावा भी होता है कि क्रोध नहीं आना चाहिए।
नहीं, बाहर के लोगों के साथ और भक्तों के साथ हमें अलग अलग व्यवहार रखना है। प्रभुपाद जी ने कहा, बिहेव लाइक ए लॉयन वेन यू आर बिहेविंग विद अ नॉन डिवोटीज, एंड बी लाइक ए लैम वेन यू आर अमंग डिवोटीज। मेमना होता ना, मेमना, उसकी तरह रहो जब डिवोटीज के संसर्ग में हो, और जब बाहर नॉन डिवोटीज के संसर्ग में हो तो शेर की तरह दहाड़ो। तो उनको तो हमें उस तरह के अगर करेंगे तो खा जाएंगे हमें। जैसे मगरमच्छ था एक और बंदर था, दोस्ती थी उनकी, और बंदर उनको मीठे मीठे रोज जामुन खिलाता था, तो मगरमच्छ भी आता था रोज, छाया भी ले लेता था और जामुन भी खाता था। तो एक दिन कुछ जामुन वो अपने पत्नी के लिए ले गया घर, मगरमच्छनी होती है, मगरमच्छनी। तो मगरमच्छनी ने जब जामुन खाए तो कहती है, ये जो बंदर है आपका दोस्त, ये तो रोज खाता है इतने मीठे जामुन, तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा, मैं तो कलेजा खाऊंगी इसका। बंदर कहता है, पागल हो गई, मेरा मित्र है, वो दोस्त है, उसका कलेजा लाने के लिए मारना, मित्र को मार दूं, ठीक है मैं मर रही हूं, फिर मैं आत्महत्या कर रही हूं। फंस गया, इधर मित्र इधर औरत, और जीत औरत की हुई, वो साथ में रहना था उसके, ग्रस्त ग्रस्त। तो गया, मित्र को कहता है, भाभी ने तुझे खाने पे बुलाया है, लंच पे बुलाया है आज, चलो। कैसे जाऊंगा, तुम तो पानी के जानवर हो, मैं बंदर, तुम चिंता नहीं करो, हमारा घर उस टापू पे है, मैं ऐसे ऐसे ही जाऊंगा, पानी के ऊपर तैर के नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर ही ऊपर जाऊंगा। वो बेचारा कूद के आ गया, पीठ पे बैठ गया, तो अभी टापू आया ही नहीं था, मगरमच्छ ऐसे लगाने लगा डुबकी। वो कहते, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर सारी बात बताई, कलेजा चाहिए था। वो कहते, कलेजा तो पेड़ पे रखा है हूं मैं, तुझे कलेजा चाहिए था वहीं बता देते, कलेजा तो पेड़ पे पड़ा है, चलो वो भी देता हूं। मगरमच्छ कहता, अच्छा वो तो मुझे अच्छी हो गया है, तो वो कलेजा चाहिए, वो तो कलेजा ही मांग रही थी, अच्छा है, बढ़िया अच्छा अच्छा है। वापस गया और वो कूद के पेड़ पे गया और कहा, हरि बोल, हरे समझ में आई कहानी? बाहर के लोगों को कलेजा नहीं दिखाना, खा जाएंगे वो तो, इतना मीठा कलेजा तो पूरा हड़प कर जाएंगे आपको। उनके साथ तो शेर की तरह रहना है, धाड़ के रहना है, भैया हम इस्कॉन के भक्त हैं, वो बाबा जी नहीं है, हम खा जाओगे हमें, पर कहना नहीं है, मतलब क्या मतलब अंदर से, मतलब आपको भाव ये रखना है कि सब पता है हमें, हमारे गुरु महाराज ने सब सिखा के भेजा हुआ है। प्रभुपाद जी की लीला देखो, प्रभुपाद जी कभी किसी से कोई किसी को कोई चीट कर पाया इनको, कितने अमेरिका में कितने कितने लोगों से रहे, वो नजर आ गया था, सोच रहा था कि तो छोटे छोटे भक्त हैं अमेरिकन है, नजर बॉम्बे का जो मंदिर बन रहा था तो कैसे उसको कैसे छीन लिया उससे, मंदिर ले पाया वो, उसको मैं जमीन लेके चला जाऊंगा, कितना आंदोलन खड़ा कर दिया, सारों इकट्ठा कर दिया और मार ही दिया, फिर तो नरसिंह भगवान को प्रार्थना की मर ही गया वो। तो थोड़ा ऐसे हम ऐसे थोड़ा है, नरसिंह भगवान हमारे साथ है, थोड़ा हम हिरण्यकश्यप को खाने देंगे, हमें खा जाएगा हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान नहीं है हमारे, समझ गए आप, धारणा है शेर की तरह। थैंक यू हरे कृष्ण, पक्की तरह बिजनेस करो, पक्के बिजनेसमैन बन जाओ। ओके थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की।